दिन भर तारीख 24 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। मराठा क्रांति मोर्चा के महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जिलों में हिंसा, एक पुलिसकर्मी की मौत।
जो बंद था महाराष्ट्र और पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र में, इसका सम्मिश्र असर देखा गया। औरंगाबाद में आज जमाव हिंसक हो गया था और इस हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो चुकी है।
लाओस के दक्षिणी हिस्से में टूटा डैम, 20 की मौत, सैकड़ों लोग लापता। और खास रिपोर्ट, पाकिस्तान के चुनाव मैदान में कई कट्टरपंथी उम्मीदवार, लेकिन क्या मिलेगा वोटरों का समर्थन?
हैरानगी वाली बात नहीं है, पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कल औरंगाबाद जिले में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। इसके विरोध में आज बंद बुलाया गया, जिस दौरान औरंगाबाद, अहमदनगर, लातूर, बीड और उस्मानाबाद जिलों के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। दक्षिण एशियाई देश लाओस में एक बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं। कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तस्वीरों और वीडियो में लोग छतों पर बचाए जाने का इंतज़ार करते दिख रहे हैं। ये बांध वहां दक्षिण कोरियाई और थाई कंपनियों की ओर से बनाए जा रहे हाइड्रो पावर स्टेशन का हिस्सा था और अगले साल इसका उद्घाटन होना था। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। लाओस की सरकार ने मदद की अपील की है। ग्रीस में अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी एथेंस के पास अटिका जंगलों में लगी भयावह आग ने कम से कम 60 लोगों की जान ले ली है। रफीना शहर के मेयर ने कहा कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। रेडक्रॉस का कहना है कि समुद्री तट के करीब एक गांव से 26 शव बरामद किए गए हैं। यही इलाका आग का केंद्र है। समुद्र से भी कुछ शव निकाले गए हैं, क्योंकि आग से बचने के लिए कुछ लोग पानी में कूद गए थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्रिपास अपना बोस्निया दौरा छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रीक फायर ब्रिगेड की प्रवक्ता स्टावरूला मालिरी ने कहा,
παράτην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αυξημένη ένταση του ανέμου με ρηπές
που Fire Brigade के तुरंत और बड़े अभियान के बावजूद तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैली, आबादी वाली जगहों को अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए वहां रहने वाले लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, जबकि वे समुद्र या अपनी कारों से महज कुछ मीटर की दूरी पर थे। ये थे ग्रीक फायर ब्रिगेड की प्रवक्ता स्टावरूला मालिरी के शब्द। भारत के राजस्थान में भीड़ की ओर से पीट पीट कर मारे गए रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिटाई की वजह से हुए आघात ने रकबर की जान ले ली। शुक्रवार को अलवर जिले में गाय ले जा रहे रकबर की कथित तौर पर कुछ गौरक्षकों ने पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जांच में सामने आया था कि रकबर को अस्पताल ले जाने में पुलिस ने लापरवाही बरती और कुछ ही दूर स्थित अस्पताल ले जाने में लंबा समय लगा दिया। मामले में कल प्रदेश सरकार ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित और 4 को लाइन हाजिर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने कहा है कि वे वहां सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि वह जिम्बाब्वे में सोमवार को होने वाले चुनावों से पहले वोटरों को धमकी, बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं से चिंतित है। एक बयान में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि लोगों को राजनीतिक रैलियों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने महिला उम्मीदवारों के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे रॉबर्ट मुगाबे के तख्तापलट के बाद जिम्बाब्वे में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला एमरसन गावा और नेल्सन चमीसा के बीच बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता एलिजाबेथ थ्रोसेल ने जिनेवा में कहा,
We remain concerned at the increasing number of reports, particularly in some rural areas, of voter intimidation.
हम वहां वोटरों को धमकी, हिंसा और उत्पीड़न की धमकियों की बढ़ती रिपोर्टों से चिंतित हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों से मिल रही रिपोर्टों से। महिला उम्मीदवारों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी चिंता का एक कारण है। ये थे संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता एलिजाबेथ थ्रोसेल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल ने कहा है कि उसने गोलान हाइट्स में उड़कर आए एक सीरियाई लड़ाकू विमान को उड़ा दिया है। इसराइली सेना ने एक बयान में कहा कि रूस में बना सुखोई विमान इसराइली वायु क्षेत्र में घुसाया था, जिसे 2 पैट्रियट मिसाइलों ने मार गिराया। सीरिया का कहना है कि वह विमान सीरियाई हवा क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन इसराइल ने उसे मार गिराया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। ये आवाजें आज की हैं, महाराष्ट्र से आई हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कल औरंगाबाद जिले में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। इसके विरोध में आज बंद बुलाया गया था। इस बंद के दौरान मराठवाड़ा के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कई इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी रोका गया। ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ वक्त पहले औरंगाबाद में मौजूद अपने सहयोगी अमी पाठक से बात की।
अभी अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा के औरंगाबाद से जहां पिछले साल मराठा मुक्त मोर्चा की शुरुआत हुई थी, वहीं से उस आंदोलन ने आज उग्र रूप धारण कर लिया। औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर, इन मराठवाड़ा के कई जिलों के साथ अहमदनगर के भी कई हिस्सों में कई सारी जगहों पे गाड़ियों की तोड़फोड़ यहाँ पे की गई। औरंगाबाद में अगर देखा जाए तो जमाव हिंसक हो गया था और इस हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जमाव ने फूंक दी। इसके पीछे की वजह ये थी कि कल मराठा समाज की ओर से रास्ता रोको औरंगाबाद नगर हाईवे पर चल रहा था। इसी दौरान जल समाधि आंदोलन कुछ युवकों ने पुकारा और इसके अंतर्गत काका साहेब शिंदे नाम के 28 वर्षीय युवक ने प्रवरा नदी में छलांग लगा दी। इसके चलते उनकी मृत्यु हुई और कल 8 घंटों तक उनका शव उनके रिश्तेदारों ने और मराठा इतर युवक थे, संगठना के लोग थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आखिरकार सरकार ने जब 25 लाख मुआवजा उनको दिया, सरकारी नौकरी उनके परिवार के एक सदस्य को देने का जब प्रस्ताव रखा गया, तब जाकर कहीं पे उनका शव जो है उनके परिवार ने हस्तगत कर लिया और आज उस शव पर अंत्य संस्कार होने के बाद मराठा संगठनों के कुछ युवक जो थे ये औरंगाबाद नगर हाईवे पर फिर से चक्का जाम कर रहे थे। अश्रु धूर की वहां पे जो है वो गन फायरिंग भी की गई, हालांकि इसमें कोई घायल अब नहीं समझ पाए है।
आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशासन को जानकारी थी, बंद की अपील पहले की गई थी, तो क्या ये जो हिंसा हुई उसे रोका जा सकता था? क्या सरकार या प्रशासन की ओर से किसी का कोई बयान सामने आया है?
इसको लेकर सरकार ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। सरकार की तरफ से भी ये सामने पेशकश आई है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। मराठा समाज की ओर से आज प्रशासन को एक पत्र लिखा गया जिसमें जल्द से जल्द प्रशासन ने इस पूरे मुद्दे पर ऑर्डिनेशन निकाल कर जल्द से जल्द रिजर्वेशन के मसले कुछ सुलह करने की बात उनसे की गई है। अगर सुलह नहीं हो पाई 1 या 2 दिन के अंदर तो आंदोलन और इसी तरीके से शुरू रखने का जो रवैया है वो भी साफ मराठा संगठनों की तरफ से साफ किया गया है।
आज के बंद में जैसी जानकारी दी गई थी कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों को बाहर रखा गया था, क्या वहां कोई असर था? ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई के लिए बंद की अपील की गई है कल।
अगर देखा जाए तो आज का ये जो बंद था महाराष्ट्र और पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र में इसका सम्मिश्र असर देखा गया, मगर मुंबई और पुणे जो है वहाँ के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक उन शहरों में की गई थी। काका साहेब शिंदे जो मृत है उनको श्रद्धांजलि के लिए एक रैली भी पुणे में निकाली गई। नवी मुंबई में जो मुंबई के जो बगल वाला शहर है नवी मुंबई, वहां पे घटना के कुछ पड़साद दिखाई दिए। कल वहां पे कुछ टायरों को फूंका गया, रास्ता रोको करने की कोशिश की गई। इसके बाद आज पदाधिकारियों की वहां पे चर्चा हुई और कल मुंबई और पुणे इलाके में बंद रखने का ऐलान मराठा संगठन की ओर से, मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से किया गया है।
आज मराठवाड़ा के कई जिलों में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जानकारी दे रहे थे अमी पाठक। साल 2016 में मराठा आंदोलन अनुशासन का प्रतीक बन गया था, अब ये तस्वीर क्यों बदल रही है? मैंने ये सवाल किया मराठा महासंघ के महासचिव राजेंद्र कोंडरे से, लेकिन सबसे पहले आंदोलन के जरिए उठाई जा रही मांगों के बारे में पूछा।
अभी जो मराठवाड़ा रीजन का जो इश्यू है मराठा आरक्षण का, वो बैकवर्ड क्लास कमीशन के इधर पेंडिंग है। जल्दी से जल्दी वो केस निकाल के रिजर्वेशन देना चाहिए, इसकी मांग है मराठा आरक्षण के लिए। और वही वो मराठवाड़ा रीजन में अनरेस्ट ज्यादा है, गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी गंभीरता से लेके ये इशू सॉल्व करना चाहिए, ऐसी मांग है लोगों।
पिछली बार भी एक मराठा आंदोलन हुआ जब मूक मोर्चे निकाले गए और ये देखा गया कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, बड़े अनुशासित तरीके से वो आंदोलन चला। इस बार क्यों ये बदला हुआ आंदोलन का चेहरा नजर आ रहा है?
अभी क्या है, वो अनकंट्रोल्ड रहे 18 से 25 जो वयोगढ़ के लोग है वही ज्यादा इसमें एक्टिव है अभी, और उसको अभी नेतृत्व कौन सा नहीं है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड है। यानी लोगों की जो राय है कि गवर्नमेंट ठीक तरीके से नहीं देख रही है, इसीलिए वो गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी इससे हिस्सा लेके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, इसीलिए थोड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा।
आप मराठा महासंघ के महासचिव हैं, क्या आपका संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है? और जो नेतृत्व का सवाल आया, तो आप लोग किस तरह से इसको नेतृत्व दे रहे हैं या कौन नेतृत्व दे रहा है, चल कैसे रहा है आंदोलन?
वो एक कोई संगठन नहीं चला रहा है, सब जो मराठा सकल समाज के लोग हैं वो इसमें शामिल है, कोई सी ऐसा पर्सनल संगठन इसमें नहीं है।
तो जिस तरह से पिछली बार आंदोलन हुआ था, एक छवि बनी थी, ये भी कहा गया कि आंदोलन का एक तरीका ये भी है, इस बार क्या आप लोगों को भी चिंता हो रही है कि इस तरह से जो तस्वीर बदलती जा रही है उसको लेकर?
हाँ, ये तो ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो नॉर्थ ईस्ट में और दिल्ली या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो कापू का रिजर्वेशन का मैटर चल रहा था, गुज्जर का चल रहा था, जाट का चल रहा था, पटेल का चल रहा था, अभी महाराष्ट्र में मराठा का चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जो दो तीन ऑर्डर है उससे वो 50% का जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस करने के लिए कोई सोचना चाहिए।
जब आपने बताया कि कोई नेता नहीं है, तो ये आंदोलन की रणनीतियां कैसे बन रही है कि आज मराठवाड़ा में बंद था, कल मुंबई बंद बुलाया गया, ये सब फैसले कौन ले रहा है?
जो ठीक ठीक से जो अलग गट है वो अभी खुद डिसीजन लेके डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा कोई उसको डायरेक्शन कोई देना नहीं रहा।
ये थे मराठा महासंघ के महासचिव राजेंद्र कोंडरे। मराठा समुदाय के आंदोलन पर वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स भी नजर बनाए हुए हैं। हमने उनसे बात की और ये पूछा कि मराठा समुदाय को बार बार सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है और इस बार आंदोलन का तरीका पिछली बार से अलग क्यों है।
देखो, चीजें जो है बदली नहीं, सवाल वहीं के वहीं खड़ा है। हिंदुस्तान में जितनी भी एग्रेरियन कास्ट, कृषक समाज जो है वो क्राइसिस में है और उनके सवाल छूट नहीं रहे हैं, बल्कि दिन ब दिन जो है गहरे होते जा रहे हैं। जब 2016 से जब मोर्चे निकले थे आरक्षण को लेके, हालांकि आरक्षण ये कोई उसका इलाज या उपाय नहीं हो, लेकिन वो जो डिमांड लेके युवा निकले थे, उसके बाद में सवाल छुड़ाने के लिए जो प्रयास होने, वो प्रयास तो हुए नहीं, बल्कि उनकी जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जो है वो सरकार ने किया और उसका ये फॉल आउट है। जैसे कि जो प्रोसेस है आरक्षण देने के लिए वो तेजी से आगे नहीं बढ़ाई। अब जो बहुत बड़ी जो यहाँ पर सरकारी नौकरियां आने वाली है, 72,000 के करीब नए जॉब्स महाराष्ट्र सरकार में आने वाले, उसमें जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 16% हम लोग रख देंगे, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यह सोच, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। ये उन्होंने जानबूझकर इसलिए कहा क्योंकि मराठों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी बात थी। उसके बाद में मराठा युवाओं की जो डिमांड आई है वो ये है कि आप जो भरने वाले हैं लोग, वो भर्ती आप बंद कर दीजिए। इसका मतलब है आप एक समाज को दूसरे समाज से लड़वा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।
आंदोलन में शामिल कई लोगों का भी सवाल सरकार से है, लेकिन सरकार के जो बयान अभी तक आए हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये जो सरकार का आश्वासन है ये लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहा है?
देखिए, सरकार अगर बातचीत करने के लिए तैयार था तो आप मुझे बताइए, यहाँ के मुख्यमंत्री जो पंढरपुर की पूजा के लिए नहीं गए, ये बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया और बहुत अच्छा निर्णय है, मैं उनकी इसलिए सराहना करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ के मुख्यमंत्री की आषाढ़ी एकादशी को पूजा करने का जो है एक सालों से परंपरा है महाराष्ट्र, वो उन्होंने किया सुरक्षा के कारण, क्योंकि वहाँ के मराठा आंदोलकों ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो हम अंदर घुसने नहीं देंगे मंदिर। उसके बाद उन्होंने पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ ये कहना, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जाकर कहा कि मुझे ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आए है कि शायद वहाँ पर भीड़ में कोई सांप छोड़ सकता है जिससे स्टैम्पेड हो जाए। ये कहने की क्या जरूरत थी? मराठाओं के लाखों के कई जो है जुलूस निकले, हर जिले में निकले, उसमें 5-5 से 10-10 लाख तक के युवा आए थे, एक साइकिल भी नहीं टूटी, बल्कि कचरा भी जमा करने के लिए उन्होंने लोग रखे थे। ऐसे वक्त में ऐसे शांततापूर्ण जिन्होंने जुलूस निकाले और बड़े बड़े आंदोलन किए महाराष्ट्र में, ऐसे समाज विशेष पर इस तरह से टिप्पणी करना, ये प्रोवोकेशन की बात है, ऐसा मैं मानता हूँ।
एक तस्वीर वो थी जब मोर्चे निकाले गए, अब हिंसा हो रही है, आगे आप क्या स्थिति देख रहे हैं?
देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को कोई लीडर नहीं है, ये लीडरलेस, और लीडरलेस आंदोलन में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होता कि जिससे कोई बात करे और मामला सुलझ जाए। ये समाज को आपने प्रोवोक किया है और वो समाज जो 35% है, वो समाज जो किसान है, वो समाज जिसका भारतीय सेना में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ऐसे समाज को आपने अगर प्रोवोक किया है और उसका कोई लीडरशिप नहीं है जिस आंदोलन का, तो उसमें हिंसा के सिवा और क्या हो सकता है? उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ने वो निभानी चाहिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग का मामला आज भी संसद में उठा। ये मामला लगातार उलझ रहा है। इस मामले में गौ रक्षकों के अलावा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की खास रिपोर्ट।
संसद के अंदर और बाहर अलवर में गौ तस्करी के आरोप में हुई रकबर की संदिग्ध मौत की गूंज दूसरे दिन भी जारी रही। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जो हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार की देर रात रकबर अपने पड़ोसी असलम के साथ राजस्थान के अलवर से दो दुधारू गाय लेकर हरियाणा के मेवात स्थित अपने गांव लौट रहे थे, तभी गौरक्षा दल के सदस्यों ने उन पर हमला कर दिया। असलम तो भागने में कामयाब हो गए, मगर रकबर भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और घटनास्थल पर पहुंची। उनका नाम है नवल किशोर शर्मा। अब नवल किशोर शर्मा का कहना है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो रकबर सही सलामत था।
अब सारी बातें सामने मैंने लगे खड़ी कर दी है, लोगों को दिख रहा है कि सारी बातें सामने आई है, पुलिस को दिख रहा है। तो मोहन जी को सस्पेंड किया, तीन बंदों को इन्होंने लाइन हाजिर किया है। जब वो ठीक थे, जब ये मुजरिम ये थे, तो पुलिस को लाइन हाजिर करने की आवश्यकता थी? जब वो ठीक था, वो सारे ये मुजरिम ये थे, तो उसको सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? अब ये सारे अपने आप के दोस्त को छुपाने के लिए ये किसी को भी मुजरिम बना देगा, ऐसे कोई बन जाएगा क्या?
तो सवाल उठता है कि क्या रकबर की मौत पुलिस की हिरासत में हुई? क्या कहते हैं नवल किशोर?
गाड़ी में आप देखिए उस तस्वीर को गौर से देखो, जो सीट है ना बैठने के लिए होती है, जो सीट उस घायल आदमी को सीट को खड़ा कर रखा है, सीट खड़ी देखिए उसके नीचे कैसा दिख रहा है, तो नीचे तल पर बिठा रखा है।
राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक दल का गठन किया है। अब तक राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ थाने में तैनात एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थाने में तैनात तीन अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक NRK रेड्डी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया,
जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आया हुआ है, हमको लगता है कि जो निर्णय लेने था जिस समय के, उस समय में रात को 1-2 बज गया था, जो निर्णय उस मौके पे देखा, इंजर्ड को देखा, वहाँ हालत को देखा, उनमें लग रहा कि वहाँ पे जो आंकलन करना था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक लग रहा।
जहाँ राजस्थान सरकार मामले की निष्पक्ष जाँच की बात कर रही थी, वहीं RSS के नेता इंद्रेश कुमार का कहना था कि इस तरह की घटनाएं होती रही जब तक मुस्लिम समुदाय के लोग बीफ खाना बंद नहीं कर देते। राजस्थान के श्रम मंत्री जसवंत यादव को भी ऐसा ही लगता है।
कोई भी हाथ इंसान अगर कानून हाथ में लेता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पर मैं मुस्लिम समाज, मेरे समाज के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये रोजाना जो रिएक्शन होता है वो भी इस गाय के गोरख धंधे को बंद करें, हिंदुओं की भावनाओं को समझें, इस देश के अंदर सद्भावना बने। जिस तरह से एक एक ट्रक के अंदर 50-50 गायें ले जाते हैं, पकड़ी जाती है और उन गायों के मुँह में तेजाब डलता है, तो हर हिंदू का खून।
रकबर की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मामले में गौ रक्षा दल के लोगों और पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। दोनों ही पक्ष रकबर की मौत के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये BBC हिंदी है और आप सुन रहे हैं दिनभर। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। पूर्वी एशियाई देश लाओस के दक्षिणी हिस्से में एक डैम टूटने की वजह से भारी तबाही हुई है। सैकड़ों लोग लापता हैं और कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक करीब 6,000 लोग बेघर हो गए हैं। हादसे के लिए बीते दिनों हुई भारी बारिश को जिम्मेदार माना जा रहा है। ज्यादा ब्यौरा दे रही हैं मानसी दास।
پانی کے بیچ سرکشت ستان تک پہنچنے کا راستہ تلاشتے لوگ، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے مدد مانگتے آگے بڑھتے لوگوں میں سے کچھ کی گود میں چھوٹے بچے ہیں تو کچھ نے بزرگوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ دکشنی لاؤس کے اٹاپو پرانت میں سوموار دیر رات ڈیم ڈھہنے کے بعد پربھاوت لوگوں میں سے یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بچ کر باہر نکل پائے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس حادثے کے بعد سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے، حالانکہ مرنے والوں کی سنکھیا کی جانکاری اب تک نہیں دی گئی ہے۔ ڈیم ڈھہنے کے بعد اس کے پاس کے 6 گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ باڑھ میں پھنسے لوگوں کو ناؤ کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے۔ پربھاوت کھیتر سے ملی تصویروں میں کئی لوگ ڈوبے ہوئے گھروں کی چھتوں پر نظر آ رہے ہیں، وہ راحت کرمیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکاری سماچار ایجنسی کے مطابق باڑھ کی وجہ سے 6600 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس ڈیم کا نرمان سال 2013 میں شروع ہوا تھا اور اگلے سال اسے چالو ہونا تھا۔ اس پریوجنا کے پرمکھ انش دھارک تھائی لینڈ کے رتچبوری الیکٹریسٹی جنریٹنگ ہولڈنگ نے بتایا کہ اسے ڈیم کے سنچالک کی اور سے اس کے ڈھہنے کی جانکاری ملی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ڈیم کے جلاشے میں کافی پانی جمع ہو گیا تھا۔ کمپنی کی اور سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروجیکٹ سے جڑی کمپنیاں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے میں جٹی ہیں۔ پریاورن کے لیے کام کرنے والے سموہوں نے اتیت میں لاؤس کی پن بجلی پریوجنا کے خطروں کو لے کر آگاہ کیا تھا۔ سرکاری سماچار ایجنسی کے مطابق پردھان منتری تھونگلون سیسولتھ نے سرکاری کاریکرم رد کر دیے ہیں اور ورشٹھ ادھیکاریوں کے ساتھ پربھاوت کھیتر میں راحت کاریہ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ستھانیہ پرشاسن نے سرکاری سنستھاؤں اور دوسرے سمودایوں سے پربھاوتوں کو آپاتکالین مدد مہیا کرانے کی اپیل کی ہے۔ ان سے کپڑے، کھانا، پینے کا پانی اور دوائیں پہنچانے کو کہا گیا ہے۔
لاؤس نے آدھیکارک روپ سے ابھی جانکاری دی ہے کہ اس حادثے میں کم سے کم 20 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ رپورٹ سنا رہی تھیں مانسی داش۔ اور اب بات پاکستان کی۔ پاکستان میں کل عام چناؤ ہونے ہیں۔ اس بار چناؤ میدان میں کئی کٹر پنتھی پارٹیوں کے امیدوار بھی ہیں، لیکن کیا انہیں سمرتھن مل رہا ہے؟ سنیے سکندر کرمانی کی خاص رپورٹ، جسے آواز دی ہے موہن لال شرما نے۔
خادم رضوی کی پہچان ایک ویوادت مولوی کی ہے، لیکن اپنی راجنیتک پارٹی بنانے کے ایک سال کے بھیتر ہی رضوی کافی مشہور ہو گئے، اور انہیں مشہور بنانے میں ایک اور ویکتی کا ہاتھ ہے، وہ ہے ممتاز قادری۔ قادری نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کا قتل کر دیا تھا۔ سلمان ایش نندا قانون میں نرمی لانے کی حمایتی تھی۔ قادری کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پاکستان میں ایک بڑا طبقہ انہیں ہیرو جیسا مانتا ہے۔ رضوی کے چناؤ میں حصہ لینے کو لے کر کئی لوگ بے حد خفا بھی ہیں، جس کے جواب میں رضوی کہتے ہیں،
حیرانگی والی بات نہیں ہے، پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے غازی ممتاز جیسے عمل کرنے والے علم الدین کا مقدمہ بھی لڑا۔
Your platform is about stricter punishment for people committing blasphemy in Pakistan. But in Pakistan,
آپ ایش نندا کرنے والوں کے لیے کڑے قانون کی وکالت کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایش نندا کے لیے پہلے ہی سزائے موت ہے، ایسے میں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟
یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس قانون کو مؤثر بنایا جائے اور اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔
یہ تھے خادم رضوی کے شبد۔ رضوی کی تحریک لبیک پارٹی یعنی کہ ٹی ایل پی کو ہنسا کی کئی گھٹناؤں کے لیے ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ اس سال مئی میں پارٹی کے ایک کارکرتا نے پاکستان کے گرہ منتری کی ہتیا کرنے کی کوشش کی۔ وجہ یہ تھی سرکار نے سانسدوں کی شپتھ کے شبدوں میں کچھ بدلاؤ کیے تھے۔ اسے رضوی کی پارٹی نے ایش نندا کہا تھا۔ گرہ منتری احسن اقبال بچ گئے، وہ چناؤ پرچار کی ریلیوں میں ٹی ایل پی کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں۔
The leader of this party came to my town and excited his followers teach me a lesson.
اس پارٹی کے نیتا میرے شہر آئے اور میرے خلاف اپنے سمرتھکوں کو بھڑکایا، میرے سپورٹرز کو سبق سکھانے کی بات کہی۔ اس طرح کی راجنیتک ہنسا کو قطعی سویکار نہیں کیا جا سکتا، یہ نفرت کی بھاونا پھیلا رہے ہیں۔ میرے شریر میں ایک گولی لگی ہے جو تا عمر میرے جسم میں رہے گی، وہ گولی مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ ہمیں پاکستان میں نفرت اور ہنسا کی راجنیتی کو نکارنا ہے۔
پی ایم ایل این کے نیتا احسن اقبال کے شبد۔ چناوی میدان میں دوسرے کٹر پنتھی نیتا بھی موجود ہیں، حافظ سعید بھی ان میں سے ایک ہے۔ حافظ سعید پر سال 2008 میں ممبئی میں ہوئے حملوں کی سازش رچنے کے آروپ ہیں، حالانکہ وہ ان آروپوں کا کھنڈن کرتے ہیں۔ سعید خود تو میدان میں نہیں ہیں، لیکن ان کے 100 سمرتھک چناؤ لڑ رہے ہیں۔ ان سبھی مذہبی پارٹیوں کے زیادہ سیٹیں جیتنے کی امید نہیں ہے، لیکن وہ ستاداری پی ایم ایل این کے کئی ووٹ کاٹنے کا مادہ رکھتی ہے۔ ایسے میں یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں کہ موجودہ سرکار کو گرانے کی نیت سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ان پارٹیوں کو سمرتھن دے رہی ہیں۔ کئی پڑھے لکھے نوجوان بھی ان پارٹیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں۔
دراصل ہماری پیدائش ہوئی ہے اسلامی گھر میں، بچپن سے ہی گھر والوں نے مدرسے میں ڈال دیا تھا، تو بچپن سے ہی الحمدللہ نماز وغیرہ دوسرا تیسرا۔ تو جب آپ کا گرو اپ ہی ایک ایسے معاشرے میں ہو جہاں پہ اسلام ہو، تو پھر بندے کا مائنڈ بھی ویسا رہتا ہے۔
دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چناؤ کے بعد کٹر پنتھیوں کا اثر پاکستان کی راجنیتی میں ضرور بڑھ سکتا ہے۔
رپورٹ سنا رہے تھے موہن لال شرما۔ ادھر یوروپی دیش گریس میں آج جنگل میں بھیانک آگ لگ گئی، جس میں کم سے کم 60 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک دشک کی یہ سب سے بھیاوا آگ ہے۔ ہمارے ساتھی آدرش راٹھور اس سمے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دیں گے۔ اور یہ جنگل میں آگ کا معاملہ اکلوتا نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کے اور بھی معاملے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ آگ جنگلوں میں لگتی ہے۔
دیکھیے وارسلے، گریس کی راجدھانی ایتھنس کے آس پاس جو اٹیکا علاقہ ہے، وہاں پر جنگل میں آگ لگی اور بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ آگ لگنے کا اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کی خبریں اکثر سننے اور پڑھنے کو ملتی رہی ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں کیلیفورنیا کے جنگلوں میں بھی ایسی ہی ڈراونی آگ لگی تھی۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنگلوں میں آخر یہ آگ لگتی کیسے ہے؟ تو آگ کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایندھن، آکسیجن اور تاپمان۔ جب گرمی اپنے پروان پر ہوتی ہے، پورے جنگل کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے ایک ہلکی سی چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ چنگاری جنگلوں سے گزرنے والی ٹرینوں کے پہیے سے نکل سکتی ہے، یا پھر ٹہنیوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے بھی یہ چنگاری پیدا ہو سکتی ہے۔ سورج کی تیز کرنوں اور اس کے کارن اگر کوئی پتھر ٹکراتے ہیں کسی اور گتیویدھی سے، تو اس کے کارن بھی آگ جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ حالانکہ زیادہ تر جو آگ لگنے کی گھٹنائیں ہیں وہ انسان کی لاپرواہی کے چلتے لگنے کے کارن سامنے آتی ہیں۔
آدرش، اور ایک سوال ایک بڑا یہ آتا ہے کہ یہ آگ جنگل میں جب لگتی ہے تو اتنی تیزی سے آخر پھیلتی کیسے ہے، جس سے کہ آس پاس کا علاقہ اور اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے؟
دیکھیے، اگر ایک بار آگ لگ جائے تو اس سے جو ہوا ہوتی، جو تیز ہوا ہوتی ہے، اس کو بڑھاوا دیتی ہے، اور اسی رفتار سے وہ جنگل میں پھیلتی رہتی ہے۔ گرمی اپنے پروان پر ہوتی ہے، اور جنگل میں جو ٹہنیاں ہیں، شاخائیں ہیں، سوکھ جاتی ہیں، جو آسانی سے آگ پکڑ لیتی ہیں۔ اگر جنگل میں ڈھلان ہے تو آگ اور تیزی سے پھیلتی ہے۔ آگ پہلے سوکھے گھاس میں پھیلتی ہے اور پھر پیڑوں کو اپنی گرفت میں لیتی رہتی ہے۔
یہ جنگلوں میں جو آگ کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں، کیا اس کے لیے موسم بھی کوئی وجہ ہوتا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی لگاتار باتیں سامنے آتی ہیں۔
جی بالکل، موسم اس میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ بارش اگر کم ہو، سوکھے کی استھتی ہو، گرم ہوائیں چل رہی ہوں، تاپمان زیادہ ہو، تو اس کے کارن جو ہے جنگلوں میں آگ جو ہے وہ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے۔
جی بہت شکریہ آدرش راٹھور اس پوری جانکاری کے لیے۔ اس گھٹنا سے جڑی خبروں کا اپڈیٹ آپ bbchindi.com پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار کلدیپ مشر سے۔
بی بی سی سماچار۔ مہاراشٹر میں مراٹھا سمودائے کے لوگ آرکشن کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے ہیں۔ اس آندولن کے دوران کل اورنگ آباد ضلع میں ایک ویکتی نے خودکشی کر لی۔ اس کے ورودھ میں آج بند بلایا گیا تھا، جس دوران اورنگ آباد، احمد نگر، لاتور، بیڑ اور عثمان آباد ضلعوں کے کئی حصوں میں ہنسک پردرشن ہوئے۔ دکشن ایشیائی دیش لاؤس میں ایک باندھ کے ٹوٹنے سے آئی باڑھ کی وجہ سے سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ لاپتہ ہیں۔ کئی لوگوں کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے اور 6,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں۔ گریس میں ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ راجدھانی ایتھنس کے پاس اٹیکا جنگلوں میں لگی بھیاوہ آگ نے کم سے کم 60 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ رفینا شہر کے میئر نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کے راجستھان میں بھیڑ کی اور سے پیٹ پیٹ کر مارے گئے رکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پٹائی کی وجہ سے ہوئے آگھات نے رکبر کی جان لے لی۔ سنیکت راشٹر مانوادھیکار کاریالے نے کہا ہے کہ وہ زمبابوے میں سوموار کو ہونے والے چناؤں سے پہلے ووٹروں کی دھمکی، بڑھتی ہنسا اور اتپیڑن کی گھٹناؤں سے چنتت ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی گھٹنائیں زیادہ تر گرامین علاقوں میں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے گولان ہائٹس میں اڑ کر آئے ایک سیریائی لڑاکو ویمان کو اڑا دیا ہے۔ اسرائیلی سینا نے ایک بیان میں کہا کہ روس میں بنا سکھوئی ویمان اسرائیلی وایو کھیتر میں گھس آیا تھا، جسے دو پیٹریٹ میسائلوں نے مار گرایا۔ سیریا کا کہنا ہے کہ وہ ویمان سیریائی ہوائی کھیتر میں ودروہیوں کے خلاف چھاپے مارے کی کارروائی کر رہا تھا۔ کسانوں کے ورودھ پردرشن کی وجہ سے سائیکلنگ کی مشہور اسپردھا ٹور ڈی فرانس کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔ پردرشنکاری کسان سائیکلنگ کے ٹریک پر سوکھی گھاس کے گٹھر پھینکنے لگے تھے۔ ایک پردرشنکاری کو قابو کرنے کے لیے ایک پولیس کرمی نے غلطی سے کچھ کھلاڑیوں پر تیکھا اسپرے بھی چھڑک دیا۔ بی بی سی سماچار۔
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान, फेसबुक प्रसारण में मदद की अभिमन्यु साहा ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।